बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कंठिरजस्य लसत्कराल गरलम् गंगाजलम् मस्तके भावांगे गिरिराजराजतनया जया भवानी सती नंदीस्कंदगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थित अखिल गुरु देय सदा मंगलम् सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीश्वर तारा नायक शेखरां स्मितमुखी मापी नवख्योरुहां पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नजशगं रक्तोद्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत पराममिगां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्यकृत वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोले बांके विहारी लाल। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन और परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिनको लोग अनंत कहते थे ऐसे हमारे परम पूज्य आनंद वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो स्वनाम धन्य है उनके चरणों में वंदन और यहां के जितने पूर्वाचार्य आप सभी भक्तिमती माताएं हमारे भाइयों। हम लोग जब ऋषिकेश कैलाश आश्रम में पढ़ते थे तो उस समय स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी का जयंती बड़े धूमधाम से वहां अभी भी मनाते हैं। उस समय दशम पीठाधीश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी थे वहां, वो हमारे गुरुदेव हैं तो वो हम लोग को पढ़ाते थे तो कहते थे कि पूज्य जो महाराज जी थे जिस समय गंगोत्री में एक बार तपस्या की और तप करते करते जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो मन में बड़ा विक्षेप हुआ बड़ा ग्लानी हुआ और उनके मन में ये भाव आया कि अब जीवन रखना अच्छा नहीं है उचित नहीं है और जिस समय वो जाकर के गंगा जी के तट पर गए और गंगा जी के अंदर जाने लगे तो कहते हैं कि लाल वस्त्र पहनी हुई 16-17 साल की एक कन्या दिखाई पड़ा, और वो कन्या रत्न जब दिखाई पड़ा तो कन्या ने कहा कि साधु, उनकी भाषा में कहा, बाबा अपने जीवन को आत्महत्या क्यों करना चाहता है, क्या बात है? उन्होंने कहा, देवी आप कहां से आई? मेरी इच्छा है कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मैं आत्मा तत्व को जान नहीं पाया, तो मेरी प्रबल इच्छा है कि जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस गंगा जी में ही अपने शरीर को छोड़ना चाहता हूं। तो उस भगवती ने हंसते हुए कहा कि देखो, शास्त्रों में आया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवतनाई। अनेक जो साधना है उस साधना में एक बहुत बड़ी साधना ये है कि जो भगवान नाम है, जो गुरु मंत्र है, उनका जो स्मरण, उनका जो पूजन, और सबसे बड़ी बात है आपकी निष्ठा। गुरु मंत्रों का के प्रति जो निष्ठा है ना, ये सबसे बड़ा भजन है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, भगवान का दर्शन कहीं गया नहीं है। वेदांत में ईश्वर को अपरोक्ष कहते हैं, इसलिए अपरोक्षानुभूति नाम की एक ग्रंथ भगवान भाष्यकार ने लिखा है। अपरोक्षानुभूति, जो अपरोक्ष है उसकी अनुभूति करना। तो कहते हैं कि उस समय स्वामी जी को वो ज्ञान हो गया कि यहां कोई नहीं है, ये तो जाह्नवी है, ये मकरवाहिनी गंगा जी है। और कहते हैं कि जब देखने लगे तो देवी दिखाई नहीं पड़ा, अंतर ध्यान हो गई, तब से स्वामी जी को आत्म साक्षात्कार हुआ। ऐसे मैंने सुना है संतों से। ये कैलाश के मंडेश्वर जी बहुत बोलते थे, हम लोग के दशम पीठाधीश्वर, तो कहते थे कि देखिए ये सब चीज है। और बंबई वालों को तो एक चीज नहीं भूलना चाहिए, मैंने ओंकारानंद से भी ये सुना, गोविंदानंद महाराज से, कि बंबई में जब आते थे साधु संत लोग तो लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे। तो महाराज ने कहा कि एक काम आप करो कि स्वामी अखंडानंद जी को यहां कथा के लिए बुलाओ, वो सुखदेव के अवतार हैं। और स्वामी जी जब आए, पूज्य महाराज जी, तब से इस बॉम्बे में सन्यासी किया है, साधु किया है, प्रस्तांतरी किया है, गीता भागवत किया है, लोगों ने समझा। उस समय एक घृणा की दृष्टि में लोग रहते थे, इन दोनों महापुरुषों के हम लोग अधमरण है, ऋणी है, कृतज्ञ है। ये हमारी कोई उपकार नहीं है, अपने भाई जी ने अभी कहा, हमारे यहां तो कई बार ऐसे आया मैं हूं, तो ऐसे कथा के लिए नहीं आया, मेरी कथा होता इधर उधर। तो देखो, गीता जी के 9वें अध्याय के ऊपर थोड़ा प्रवेश करते हैं। 9वां अध्याय की व्याख्या जब भगवान शंकराचार्य करते हैं, तो गीता जी का जब विष्णु भगवान की एक बेटी है और उस बेटी का नाम गंगा जी है, विष्णु भगवान के घर में बहुत से बेटियां हो सकती है, लेकिन जाह्नवी गंगा उनकी एक बेटी है जो नख से उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार से महादेव जी की एक बेटी है, जब अमरकंठ की मैकल पहाड़ पर शंकर तपस्या कर रहे थे, बैठे थे, तो उनके शरीर से थोड़ा पसीना आया, और उस पसीना से जो कन्या रत्न का प्रागट्य हुआ उसका नाम देवी नर्मदा है, कि नर्मदा। अब भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि हमारे भी एक गुड़िया होनी चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए, और वो बेटी कौन होगा? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थोर्वश्च सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीता जी के नाम से वो प्रकट हुई। ऐसे तो महाभारत में और भागवत जी में कृष्ण भगवान बहुत बोले हैं, यशोदा जी ने बहुत डांटा है, लेकिन उनके कन्या रत्न जो है ना प्रकट नहीं हुई। इसलिए भगवान वेद व्यास जी को कहना पड़ा कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। बोले कि भाई आप पद्मनाभ विशेषण क्यों लगाते हैं, पद्मनाभ की कोई जरूरत नहीं है। तो कहा पद्मनाभ इसलिए लगाए कि कृष्ण तो द्वापर में अवतार लिए, लेकिन पद्मनाभ वो संसार के आदिकाल में जब भगवान के विष्णु के नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और उस समय भगवान बद्रीनाथ जी का नाम ये पद्मनाभ नाम पड़ा, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता, जिनके मुखमंडल से गीता जी प्रागट हुई। गीता शब्द का व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण में एक धातु है, धातु का नाम है गई शब्दे धातु, कई गई शब्दे धातु। गई शब्द से स्त्रीलिंग में गीता शब्द बनता है। इसका उदाहरण जो है ना भज गोविंदम में है, गीयते गीता नाम सहस्त्रम, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ऐसे आया, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्रम। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गेयम ये पुरलिंग है, गीता स्त्रीलिंग है, सहस्त्रम जो है नपुंसक लिंग है। ये देख, गेयम का अर्थ क्या है, गातु योग्यम गेयम, जो गान करने योग्य है ना उसको कहते हैं गेयम। बालक जब बोलता है तो सुन करके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, जो बालक कह तोतरी वाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। बालक कुछ भी बोले तो उसके जो है ना वाणी को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, तो गेयम, इसलिए उन्होंने कहा गेयम माने गातु योग्यम गेयम, जो गान करने योग्य है। बालक जैसे बोलता है ना ऐसे आप जो है ना हमेशा परमेश्वर की वाणी को जो है ना गान करें, इसलिए आचार्य पाद ने कहा गेयम माने गातु योग्यम, ये गेयम है। किसको गान करना चाहिए, बोले नाम सहस्त्रम, विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का, और भी शिव सहस्त्र नाम का, जो भी आपको अच्छा लगे नाम सहस्त्रम गेयम। भगवान के जो हजार नाम है उनको गान करना चाहिए। इसलिए गीयते यासा ब्रह्म विद्या इति गीता, गीता का ये लक्षण है आप सब लोग जानते हैं। यहां तो बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े संत आते हैं और बड़े बड़े प्रेमपुरी को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। तो गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गातु योग्यम गीता, और गीता का अर्थ बताया है कि गेयम गीता या सा ब्रह्म विद्या, जो गान करने योग्य है। गेयम माने यहां अर्थ है जो जानने योग्य है। तो अपने गिरीश भाई जी कह रहे थे कि भाई नवा अध्याय का थोड़ा ये हो, तो नवा अध्याय में जो गीता जी का जो प्रसंग आया है इसके ऊपर जो श्रीधरी की व्याख्या है नीलकंठी इत्यादि, उसमें मधुसूदन सरस्वती का तो ये विश्लेषण है कि मधुसूदन सरस्वती जब कहते हैं तो उनका तीन शतक है, पहले से लेकर के छठवां अध्याय तक वो कर्म प्रेरक मानते हैं, कर्म कांड जैसे मानते हैं, और छह से लेकर के बारहवां अध्याय तक ज्ञान कांड का विषय को बताते हैं, और बारहवां से अठारह अध्याय तक वो भक्ति परक सिद्धांत को मानते हैं। मधुसूदन जी का अपना जो है ना एक व्यक्तित्व जो है ना व्यक्ति विचार है, वो है शास्त्रीय सम्मत, लेकिन यहां पर कहते हैं कि जब आठवां अध्याय आप श्रवण किया, उस आठवां अध्याय में एक श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य दुकौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब तक साधक ईश्वर का दर्शन नहीं करता तब तक जो है ना उसको पुनर्जन्म होता रहता है। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु, वहां पर जो ये प्रसंग आया उस प्रसंग में ये संशय है कि यदि इस प्रकार की साधना यदि नहीं होगा तो आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, तो यही साधना है कि कोई दूसरा साधना है, ऐसे अर्जुन के मन में प्रश्न है। कभी कभी गीता जी में जब वो देखते हैं ना तो अर्जुन तो पूछते नहीं है, ऐसे भी है, बेटा जो है ना पिताजी को पूछता तो नहीं है लेकिन पिताजी स्वयं बोल देते हैं। एक पिता अपने बेटे को लेकर के जो है ना कहीं गया, और जब गया तो मेला में जब वो गया तो उसने बेटा जी ने पिताजी के हाथ को पकड़ा, तो पिताजी ने कहा कि देखो ये हाथ को तुम पकड़े हो मेरे हाथ को, और ये मेला है, भीड़ भड़ाका है, ऐसे करो कि ये हाथ को जो है ना तुम मेरे हाथ को मत पकड़ो। उन्होंने कहा पिताजी क्या हो गया? बोले भीड़ में यदि कहीं हाथ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा, एक काम करो कि मैं ही तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूं। उन्होंने कहा ये क्या बात है? बोले मैं तुम्हारा पिता, मुझे मोह है कि मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। ऐसे जीव जब परमेश्वर के हाथ को पकड़ता है तो अविद्या की वशीभूत होकर के कहीं छोड़ देता है। उसके सामने अज्ञान का बड़ा बेटा विक्षेप आता है, और विक्षेप के चलते जो है ना जीव अपने जो आत्म तत्व है, स्वरूप है, उसका जो है अनुभूति को भूल जाता है कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का भाव नहीं बनता। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे करें कि परमेश्वर ही आपके हाथ को पकड़े। परमेश्वर आपको हाथ को इसलिए पकड़ा है कि कवहुं करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, मनुष्य जीवन दिया है ये भगवान ने आपके हाथ को पकड़ा। भारतवर्ष में आपको, अवधेशानंद जी कहते हैं, स्वामी जी हमारे बहुत परिचित हैं, तो कहते थे कि ये भारतवर्ष की बड़ी महिमा है, भारत में जन्म लेना ही आपको भगवान ने उसका जो हाथ है ना अपने हाथ से पकड़ा है। भगवान ने अपने हाथ से भारत में जन्म दिया, और सारे तीर्थों की राजा समुद्र, और समुद्र जहां पर है उस स्थान पर आप रहते हैं और दर्शन करते हैं। आपको न गंगा जाने की जरूरत है, न जमुना, न सरस्वती, न गोदावरी, आपको तो साक्षात जो है ना यहां समुद्र है, और समुद्र में आप स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, समुद्र का जल लेते हैं, तो सारे तीर्थों का भंडार ये भगवान वरुण है। उस वरुण के नगरी में यदि कोई रहे तो ये भी अहोभाग्य है। इसलिए गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ये देखो स्वर्गावर्गस्पद हेतु भूय भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्। तो गीता जी में भगवान वेद व्यास जी ने एक पुष्पिका बनाई जो नौवां अध्याय के ऊपर है। यहां पर प्रश्न इतना है कि आठवां अध्याय में जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई ये प्रसंग ये है कि आप जो है आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जब तक मुझे प्राप्त नहीं करोगे तो पुनर्जन्म होता रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि आप परमेश्वर की प्राप्ति करो। और वहां पर क्रम दिया कि जो नाड़ी के द्वारा जो क्रम है वहां पर सुषुम्ना इंगला पिंगला आठवां अध्याय पर, तो एक शंका है कि वो जो ब्रह्म की जो प्राप्ति है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब मोक्ष रूप फल की जो प्राप्ति है, वो कैसे दूसरे विषय में संभव है कि नहीं है, किस प्रकार से मिलेगा, इसके ऊपर जो है ना भगवान ने यहां पर इस आशंका को दूर करते हैं। आदि शंकराचार्य ने लिखा है एवं प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते न अन्यथा। मोक्ष रूप फल की प्राप्ति करना है तो ये आठवां अध्याय में जो भगवान ने कहा कि जब तक प्राणायाम नहीं करता, जब तक उसको जो है प्राणायाम के द्वारा मन को निरुद्ध नहीं करता, तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, तो क्या और कोई साधन है कि नहीं है, इसके ऊपर भगवान ने कहा है। श्री भगवान उवाच इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे सुभा। उच्चारण भी होता है क्या? उच्चारण तो नहीं होता ना, करते हैं? नहीं, आप लोग करते हैं उच्चारण? स्वाध्याय में होता है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्या मनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् अशुभात् मोक्षसे यद् ज्ञात्वा ज्ञानं विज्ञानसहितं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अमन्य अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे यहां ऐसे है प्रवक्ष्यामि अनसूयवे पदच्छेद में यह है। यहां भगवान जब कहते हैं तो भगवान की विषय है इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे ऐसे इसका पदच्छेद है। कहते हैं इदम ये संस्कृत के जो विषय है ना संस्कृत में थोड़ी सी अंतर है। कैलाश में हम लोग पढ़ते थे तो एक कहा कि दिल्ली के एक बहुत बड़ा कमिश्नर था क्या था पता नहीं आए तो उनको हिंदी बोलने नहीं आता था वो अंग्रेजी बोले और हमारे जो महाराज जी थे ना वो अंग्रेजी जानते तो थे लेकिन वो ज्यादा उसको ध्यान नहीं देते थे। रोहतक कैलाश आश्रम में बैठे थे पति पत्नी आए तो स्वामी जी ने पूछा वो पूछने वाले थे कि ये तुम्हारा तू विधवा है कि सधवा है ये पूछने वाले थे तो हम ही थे हम उनके सेवक लोग थे वो विष्णु चैतन्य इत्यादि हम भी बैठे बोले दयानंद जी ये बोलो इसको पूछो ये क्या है। तो मैंने ही पूछा कि देवी जी आपके ये क्या लगते हैं तो उसने कहा ये मेरे हजमेंट हैं। उसने कहा तो बोले ये कौन है तो वो आदमी ने कहा कि मैडम है मैडम। तो ये स्वामी जी को ज्ञान नहीं था कि हजमेंट माने क्या होता है और मैडम माने क्या होता है तो उन्होंने पूछा हजमेंट माने क्या होता है तो देवी जी ने कहा कि महाराज ऐसे है पत्नी की आज्ञा को जो नित्य निरंतर पालन करे उसको जो है ना हजमेंट कहते हैं। उसने ये कहा हम कहेंगे झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाए कपड़ा धोए तो कपड़ा धोए हमारी आज्ञा को ननु नचर नहीं करना है शंका नहीं करना है कि तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानेंगे इसलिए इसका नाम हजमेंट है। बोले ये तुम्हारा नाम मैडम कैसे हो गया तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेंढक जैसे दिन भर चिल्लाता है ऐसे जो दिन भर चिल्लावे तब इसलिए उसको जो है ना अंग्रेजी में मैडम बोलते हैं। उसने कहा ये बात सही लगा माँ इडम मैडम संस्कृत में मैडम का अर्थ होता है माँ इडम इडम माने स्तुति मत करो कभी भी देवी का स्तुति नहीं हो सकता क्योंकि आप जयंती हैं आप गौरी हैं आप कमला हैं आप महालक्ष्मी हैं तो आपकी स्तुति होगा लेकिन मैडम की स्तुति नहीं होता। जा देवी सर्वभूतेषु मम्मी रूपेण संस्थिता नहीं लिखा है प्रसंग है माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये देखो ये हजमेंट और ये मैडम लेकिन वेदांत में आप जब जाते हैं तो यही ना कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव यही शास्त्र कहते हैं कि आप माता देवता है पिताजी देवता है आचार्य देवता है। इसलिए बार बार उपनिषद का ये मंत्र सिद्ध करते हैं कि स्वाध्याय प्रमादाभ्याम मां प्रमोदितव्यम स्वाध्याय में और सत्संग में प्रमाद न करे ये मनुष्य का यह धर्म है। तो गीताकार कृष्ण इस बात को कहते हैं इदम व्याकरण में जब इदम शब्द का प्रयोग होता है तो वस्तु के निर्देश से होता है। इदम का अर्थ होता है अयम पुष्पम ये फूल है पुष्पमाला ये जो है ना ये सरगवी है ये फूलमाला है। तो इदम शब्द से जैसे सामने आंखों के सामने जो विषय है उसको जो निर्दिष्ट किया जाता है उसको संस्कृत में इदम कहते हैं इदम इमे इमानी ऐसे इसका जो है ना नपुंसक में लिंग में ये रूप बनता है। इदम कह करके भगवान ये कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष है इदम तुते गुह्यतमम, जो अत्यंत गोपनीय है। गुह्यतमम, गुह्य माने गोपनीय, और तम का अर्थ होता है तमप प्रत्यय। अतिशयने तमप इष्टनो, एक सूत्र है कि अत्यंत गोपनीय है, इसलिए गुह्यतमम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत का रूप है। तू ते गुह्यतमम, ये जो ब्रह्म विद्या है अत्यंत गुह्यतम है, अत्यंत गोपनीय है, ऐसे भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं? जब आप शास्त्र में जाते हैं, वेदांत में जाते हैं, तो वेदांत में ईश्वर को निर्विषय चैतन्य कहा जाता है, जहां पर विषय नहीं है। और विषय नहीं होने पर भी निर्विषय भाव में जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर में संसार का विषय नहीं होना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का जो अभाव, वो जो भाव है ना, उसको कहते हैं निर्विषय। जहां पर विषय परिच्छेद भाव नहीं होता, ये मेरा है, ये तेरा है, अहम मम वृत्ति जहां नहीं होता, उसको जो है ना गीता जी में निर्विषय कहते हैं। ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों में जहां पर ये वर्णन किया गया, ये परमात्मा क्या निर्विषय है। निर्विषय का मतलब है त्रिगुणातीत है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित। आत्मबोध में तो यही बात उठाया कि वो आत्मा क्या है। बोले भाई, वो जो आत्मा है पंचकोशातीत आत्मा, पंचकोश से रहित। अब वो भगवान इस बात को कहते हैं गुह्यतमम। जिस समय साधक विषय से दूर हो जाता है, आंख रहता है लेकिन आंख में दोष दृष्टि नहीं होता, कान होते हैं, शब्द सुनता है लेकिन ये मेरा तेरा भाव नहीं होता, हाथ होते हैं लेकिन हाथ जोड़ता है और सत्कर्म करता है, जो हस्त का जो कर्म है वो काम करता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दोनों जिस समय सात्विक भाव में जाते हैं, उसको गीता जी में निर्विषय भाव कहते हैं। वही निर्विषय है। इदम तुदे गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें गुह्यतम की बात कहता हूं। ऐसे क्यों कहा? बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, आत्मेव इदम सर्वम, ये संपूर्ण जगत आत्मा है। वहां देखिए इदम शब्द का प्रयोग, आत्मा एव इदम, आत्मा ही सब है। कहां पर है? इदम, इदम माने सब कुछ। सब कुछ का अर्थ है नाम रूपात्मक जगतम इदम। नाम रूपात्मक जो जगत है ना, उसको इदम कहते हैं, जहां पर नाम है और जहां पर रूप है। तीनों सत्ता में प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और परमार्थ सत्ता, तीन सत्ता जो है ना शास्त्रों में कहा गया है। आप परमार्थ सत्ता में जब पहुंच जाएंगे, तो उस समय नदियां जब पहुंच गई समुद्र में और गंगा सागर में मिल गई, तो नदियां नहीं कहेगी कि मैं मीठा हूं, मैं खारा हूं। नदियां को यह ज्ञान नहीं हो पाएगा कि मैं मीठू पानी, मैं मीठा हूं। आपुर जमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति यदवद तद्वद कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जिस समय वो नाम रूप को छोड़ देंगे, आपका रूप जो है ना 3.5 शरीर का है, वो हमारे बड़े कथाकार है ना मुरारी बापू जी, उनको लोगों ने पूछा कि महाराज, ये समझ में नहीं आया कि दक्षिण भारत जब गए तो लोग इडली डोसा वही खाते हैं, कोई खाता ही नहीं उधर। रामेश्वरम तरफ जाइए तो इडली डोसा सांभर बड़ा, कोई दाल चावल रोटी सब्जी लेता ही नहीं, ये क्या है? तो एक ने कहा कि ऐसे करो, पूछा कि ऐसे क्यों खाते हो? तो कहा कि त्रेता युग में जब भगवान आए दक्षिण भारत में, तो उस समय लोगों को काला देखा उसने, तो लोगों से कहा कि क्या करना है, तो लोगों ने कहा कि सफेद कैसे होंगे, तो सफेद होने के लिए इडली डोसा का प्रोग्राम बनाया उन लोगों ने। तो भीतर से जो काला ऊपर से भी काला, वो काला में वो श्वेत वर्ण हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए जो है ना वो इडली डोसा खाने का प्रोग्राम बनाया। वही खाते हैं कि हमारा जो भीतर काला है वो ऊपर भी काला हो जाए, और दोनों में काला है तो श्वेत हो जावे, इसलिए वहां के लोग जो है ना वही खाना पसंद करते हैं। तो अच्छा लगा उन लोगों को, उनकी कथा थी। तो कभी कभी शास्त्रों में इस बात को भगवान कहते हैं अनसूयवे न सूयव इति अनुसूयव, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है अनसूयवे, असूया दोष से रहित। हमारे जीवन में जो असूया है, असूया का अर्थ है दोष दृष्टि, दोष दृष्टि से रहित जब साधक हो जाता है तो उसके जीवन में सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, सब कुछ राम है कृष्ण है, यही भाव आता है। आप किसी की दोष नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, कि आपके दृष्टि में आपका इष्ट देव परमेश्वर को छोड़कर के दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए आप जो है ना दोष दृष्टि से रहित है। असूयवे ऐसे कहा, अनसूयवे का अर्थ होता है न सूयव, दोष दृष्टि रहित एषाम साधक इति अनसूयव, दोष दृष्टि से रहित है। इसलिए दोष दृष्टि से रहित का मतलब है कि जब साधक साधना करते करते निज प्रभुमय देख ही जगत कही सन करहूं विरोध, सब कुछ आत्मा है सब कुछ राम है ऐसे जब देखता है तो वो जो है ना वो दोष दृष्टि से रहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान का ये कहना है कि हे अनसूयवे, अर्जुन का बहुत नाम था, अर्जुन के 10 नाम था, 10 नाम में एक राजा हुआ है, राजा का नाम है दमघोष। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके नाम को लिख करके मिटा दूं वो समाप्ति हो जाए, वो मर जावे। ब्रह्मा जी ने हां कहा। वो जब द्वारका जी में आया युद्ध करने के लिए, और अर्जुन भी थे और कृष्ण भी थे, जब युद्ध किया तो अर्जुन का जितना नाम जानता था ना वो लिखा, और अर्जुन का नाम लिखते लिखते जब मिटाने लगा हाथ में तो अर्जुन की मृत्यु नहीं हुई, कृष्ण की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन का जो नाम है ना वो 10 नामी है, 10 नाम गांडीव किरीटी इत्यादि नाम है। तो अनसूयवे का अर्थ यही है कि जिसमें दोष दृष्टि न हो। अर्जुन को भगवान इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे में दोष दृष्टि नहीं है, इसका मतलब साधना करते करते बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवानवाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, अनेक जन्म जन्मांतर के साधना के द्वारा आज जो सत्संग में आप बैठते हैं और इतना वर्षों से कथा सुनते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, ये आपकी अनेक जन्म जन्मांतर की साधना है। ये साधना प्रत्यक्ष रूप में ये प्रामाणिक है कि आपकी साधना यदि नहीं होता तो भगवान भारतवर्ष में मनुष्य जीवन नहीं देते, और मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और दुर्लभ जीवन में भी सत्संग यदि मिल जावे, स्वाध्याय मिल जावे, संतों का दर्शन हो जावे। हम लोग तो डोंगरे महाराज जी के बहुत करीबी रहे, तो वो बोलते थे कि बोले देखो एक काम करना, किसी की निंदा मत करना, ये डोंगरे जी का ये शब्द था, किसी की निंदा मत करो। निंदा करना पड़ता है, व्यवहार में है तो करना पड़ता है, फिर भी अंतःकरण से निंदा नहीं होना चाहिए। व्यवहार में है तो निंदा करना पड़ता है, प्रशंसा करना पड़ता है, इसलिए से उड़िया बाबा जी महाराज रोज हमेशा बोलते थे कि न प्रशंसे तो किसी की प्रशंसा भी न करें और किसी की निंदा भी न करें। जो आत्मज्ञानी होता है शरीर की निंदा भी नहीं हो सकता और शरीर की प्रशंसा नहीं हो सकता। ब्रह्म प्रशंसा सुनता नहीं और ब्रह्म निंदा सुनता नहीं, असंगो यम पुरुष है, असंग है। इसलिए भगवान का यह शब्द बड़ा अद्भुत है, अनसूयवे असूया दोष से रहित, किसी की निंदा न करे। किसी की दोष दृष्टि न देखे, ये संबोधन है जी। अनसूयवे ये संबोधन है कि दोष दृष्टि से रहित, क्योंकि अर्जुन का ये मन में भाव था। ऐसे आता है कथा कि अर्जुन जब सोते थे तो उनके मुख से कृष्ण 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 का उच्चारण होता था। एक बार नारद जी आए और अर्जुन सोए हुए हैं तो देखे कि कृष्ण का उच्चारण है, तो तुरंत जो है ना भगवान को उठाया। और कृष्ण और नारद जब नाचने लगे तो अर्जुन उठे, और उसी समय जो है ना उन्होंने भगवान का कृष्ण कृष्ण का उच्चारण तीनों मिलकर के किए। तो कहते हैं कि भगवान ने देखा कि जिसके सोते समय देखो दोष पात्र हैं, त्रेताजु का एक पात्र है लखनलाल जी और द्वापर जी के एक पात्र हैं अर्जुन जी। अर्जुन कभी सोते नहीं है इसलिए इनको गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका निद्राया ईश इति गुड़ाकेश, जो निद्रा को जीत लेवे ना उसको कहते हैं गुड़ाकेश। जिसके घुंघरालू बाल हो वो भी गुड़ाकेश है, लेकिन निद्रा को जीतने वाला ये गुड़ाकेश है। और राम के समय में त्रेता युग में लखनलाल जी जो है ना निद्रा को जीते थे, उन्होंने कभी सोया नहीं। और सोते समय भी राम राम, और द्वापर में अर्जुन जो है ये सोते समय भी कृष्ण कृष्ण। इसलिए जो निद्रा को जीत लेवे उसको शास्त्रों में जो है ना, और निद्रा का अर्थ है आलस्य प्रमाद तमोगुण, इसको जो जीत लेता है उसका उसको कहते हैं निद्रा को जीत लिया। निद्रा का दूसरा अर्थ है आलस्य प्रमाद तमोगुण। इसलिए भगवान की ये वाणी है कि अनसूयवे, ये उदाहरण ये संबोधन यहां क्यों दिया कि साधना के द्वारा बहुना जन्मनामंते, बहुत जन्म जन्मांतर तक। बहुना जन्मनाम अंत का अर्थ है बहुनाम 84,00,000 जोनी के द्वारा आप जाते जाते, अंत का अर्थ है मनुष्य जीवन की प्राप्ति होने के बाद 84,00,000 जोनी में आप गए और अनेक जन्म जन्मांतर में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जब जिस समय ज्ञानी हो जाता है, जिस समय सब परमेश्वर है इस भाव को जानता है, तो उस समय जो है ना मैं ईश्वर से अलग नहीं हूं ऐसे भाव को जानता है। चैतन्य गिरी शास्त्री जी महामंडलेश्वर जी थे कैलाश के, वो ये होशंगाबाद आए, रात के 11 बजने वाले थे। देखा कि एक जोगी सोया हुआ, एक महात्मा उनके सामने वो बैठे, और सुबह जब हुआ 7-8 बजे तो साधु को उठाया उसने, कहा कि महाराज उठ जाओ, और सुबह हो गया। तो उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा शरीर को देखो। जब देखा तो कहते हैं कि सर्वत्र राम राम का उच्चारण हो रहा, यहां देखा यहां देखा, पैर को छुआ, सभी जगह राम राम। तो चैतन्य गिरी शास्त्री जो महामंडलेश्वर जी थे ना, उनको हाथ जोड़ा, उसने कहा महाराज जिनके अंतःकरण में और सर्वांगीण जिनमें भगवान का निवास है, निस्त्रे गुण्याम पथिम विचरिताम को विधि को निषेध, उसके लिए क्या अब साधना है, सारे साधना उसको मिल गया। नदियां समुद्र में चली गई तो सारे मनोकामना पूर्ण हो गए। तो जिनके हृदय में रोम है, माने परमेश्वर है रोम रोम में, उनके लिए कोई भाव नहीं है। इसलिए अर्जुन के हृदय में जो है ना सर्वत्र कृष्ण का निवास है, और जिनके हृदय में श्याम सुंदर जी हैं, कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, उनको गीताकार ने अनसूयवे कहा। आपके हृदय में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, तो आप में दोष दृष्टि नहीं होगा जी। यदि आप में वो है हृदय के अंदर, तब तक दोष दृष्टि होगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम्, सत्व गुणी होने से ज्ञान होगा, और रजोगुणी और तमोगुणी होगा तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये देखो काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये शब्द अच्छा है अनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं ज्ञानम अनसूयवे। इसका मतलब पात्र पात्रता ये दोनों होना जरूरी है। जब भी वेदांत का श्रवण आप करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे, एक पात्र होता है और उस पात्र में पात्रता है। पात्र में पात्रता के लिए शास्त्रों में इस बात का निरूपण किया कि आपके पास छह संपत्ति है, षट संपत्ति में कोई भी संपत्ति होना चाहिए। उसमें श्रद्धा को जो है ना सबसे बड़ा माना है, और ये जो श्रद्धा है वेदांत और गुरुवाणी में विश्वास, यही श्रद्धा है। इसलिए अनसूयवे शब्द का अर्थ होता है किसी में दोष न देखे। इसके सीधे सीधे उदाहरण भागवत जी में है। जब भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास गए और उन्होंने कहा, बुआ जी एक काम करो, आप वरदान मांगो, तो कुंती जी ने कहा कि कोई वरदान की इच्छा नहीं है। विपद संतु न शस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने कहा कि एक काम करेंगे, बोले बोलो। विपद संतु, हमारे जीवन में दुख आवे, ऐसे कुंती बुआ ने क्यों मांगा? आप वरदान मांगो न मांगो, ठंडी आएगी कि नहीं आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, आप वरदान नहीं मांगोगे, आपने अपना घर बनाया है ये एसी वाला, तो आप अपने के लिए ना बनाए हैं कि मच्छरों के लिए बनाए हैं? अपना घर अपने लिए बनाए, लेकिन मच्छर और छिपकली जरूर कभी ना कभी आ जाएगी, कभी न कभी हो जाएगा। घर आपने जो बनाया है वो अपने के लिए बनाया। एक महात्मा जी दिल्ली में गए तो बोले क्या हो गया, तो वो गृहस्थ को बोले कि इच्छा ये है, एक काम करते तो अच्छा होता। बोले क्या है? आपके बाथरूम में सोने की इच्छा हो रहा था। तो बोले बाथरूम में क्यों सोओगे? बोले घर से भी अच्छा बाथरूम है। उसने कहा तो ये इच्छा ये है कि बाथरूम में हम सोएंगे। तो सदगृहस्थ ने पूछा कि ऐसे क्या बात है? बोले जितने आपने इसको सजाया है शायद मंदिर को उतना नहीं सजाया, जितना मन इसमें लगाया उतना जो है ना देवालय में नहीं लगाया, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना मन इतना हृदय में नहीं लगाया। क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यहां दुर्लभ है ये, अब बहुत दुख से मिला है। तो कुंती का कहना बड़ा अच्छा लगा कि विपद संतु, हमारे जीवन में दुख होए, शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु का दो अर्थ है, जगत गुरु जगत गुरु, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो गुरु हैं, अधिष्ठान है, आश्रय है, उसको जगत गुरु कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान जो है ना परमेश्वर है, इसलिए जगत गुरु है। और जगत ही जिसके गुरु है वो भी तो जगत गुरु है। काम क्रोध लोभ मोह जो है ये जिनके गुरु है, उस जगत के जो गुरु है ना, जगत को जिसने गुरु मान लिया वो है जगत गुरु। लेकिन ये वास्तविक में भगवान वेद व्यास जी इस बात को कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के जो गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को जो नाश करे, ऐसे जो परमेश्वर है उनको गुरु शब्द से यहां कहा गया है। तो अनसूयवे का उदाहरण कुंती जी में है, दोष दृष्टि नहीं है, इसलिए वो कहते हैं विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात्। आपका दर्शन हो जावे, और आपके दर्शन से क्या होता है, अपुनर्भव, पुनर्जन्म नहीं होता। देखो इसका बड़ा अद्भुत उदाहरण है, राम जी का दर्शन किसने किया? अशूर्पणखा ने। अशूर्पणखा ने जब राम जी को देखा तो उसने कहा कि देखो महाराज, मैं दिव्य सुंदरी हूं, तुम असम पुरुष मोसम नारी यह विधि संजोग रचा विचारी। सूर्पणखा कह दिए कि तुम्हारे जैसे पुरुष मेरे जैसी स्त्री। राम जी ने कहा बात तो सही है कि मेरे जैसे कोई नहीं है, लेकिन तू कहता है कि मेरे जैसे, तो बोले इसमें क्या दोष है। बोले दोष तो यह है कि राम के पास जो आवे, भगवान के पास जो आवे, भगवान को वही सुंदर लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र नहीं भाव। यदि तू सुंदर होता तो अपने रूप में आता। तू है एक असुरी, एक स्त्री, लेकिन दिव्य सुंदरी बनकर के आई है। एक महात्मा जी ने कहा कि देखो सूर्पणखा को कहां ढूंढते हो, बड़ा अच्छा उसने कहा। सूर्पाणी नखानी यो अयस्या नारी सा सूर्पणखा। जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, वो सूर्पणखा होते हैं, ऐसे उसने कहा। तो बोले बम्बई दिल्ली में तो ये बड़े बड़े नाखून वाले बहुत भरे पड़े हैं, कलकत्ता में, अभी बनारस में भी वो सब हो गए, बड़े बड़े नाखून वाले। पहले नहीं आते थे, लेकिन वे बनारस में भी, विश्वनाथ जी में भी देखते हैं कि बड़े बड़े नाखून वाले कभी कभी आते हैं। तो ये सूर्पणखा हो गए ना, जिसका नाखून बड़ा बड़ा हो। बड़ा अच्छा उसने समझाया। स्वामी वामदेव जी की बात कर रहा हूं मैं, वृंदावन वाले वामदेव जी महाराज, बड़े अच्छे महात्मा थे। स्वामी अखंडानंद जी बहुत मानते थे उनको। तो वो कहते थे कि ये देखो आप किस सूर्पणखा को ढूंढ रहे हो। सूर्पणखा ने कहा कि तुम सम पुरुष मो सम नारी, और आगे आप जाएंगे खरदूषण को, तो खरदूषण ने भगवान को देखा तो कहा कि खरदूषण इतना बड़े तपस्वी थे, माने योद्धा थे, तो खरदूषण जब मृत्यु हो गया तो रावण ने कहा खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे जैसे बलवान है, कही बीनु मारही को भगवंता। उसको तो भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। इधर कुब्जा ने जब कृष्ण को देखा तो कुब्जा को भगवान ने कहा तो सुंदरी है, दिव्य सुंदरी है। आज फूल असुर को नहीं दे रहा है, आज कन्हैया जी को फूल और चंदन दिया, तो देखो ये सुंदरी का ये सबने दर्शन किया। लेकिन दर्शन करने पर भी इनको मोक्ष नहीं हुआ, ये पुराणों में प्रमाण है। इसलिए मोक्ष नहीं हुआ कि भगवान को भगवान के रूप में दर्शन नहीं किया। कंस ने दर्शन किया तो मोक्ष नहीं हुआ, पुतना मां बनकर के आई तब अभी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यशाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने कृपा की। इसलिए अनसूयवे का बड़ा ये अद्भुत अर्थ है कि दोष से रहित। आप दोष देखेंगे व्यवहार काल में, प्रतिभासिक काल में तो दोष होता ही नहीं है। स्वप्न में गए, सुसुप्ति हो गया, आठ घंटा तक सोए, न किंचित अवेदिशम, मुझे ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जिस समय व्यवहार काल में रहेंगे तो दोष देखना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार काल में जिस समय हृदय में परमेश्वर का संबंध बनता है, परमात्मा का विषय होता है, तो दोष दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं कि नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए ना खंभे से, तो प्रहलाद जी को चाटा उसने, और प्रहलाद जी को पकड़ करके जब रोए तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि क्या हो गया। बोले बेटा वरदान मांगो, बहुत दंड मिला तुम्हें। तो प्रहलाद जी ने कहा महाराज अनसूयवे, मेरे में कोई दोष है नहीं, क्योंकि जहां मैं देखता हूं सब तू ही है। तुम्हें छोड़ करके जब कुछ नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण जगत जब ब्रह्ममय है, राममय है, तो आप दोष देखेंगे नहीं देखेंगे। अरे जो भी होगा यही कहेंगे, सब भगवत इच्छा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए, ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया। इसलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अशुभात का अर्थ है कि जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसको यहां कहते हैं अशुभात। ये बार बार जन्म होना, गर्भधान होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, तो इससे कैसे होगा? अशुभात मोक्ष से, अशुभ से पार हो जाएगा। मुचली मोचने धातु का रूप है जी, मोक्ष से ये मध्यमा के पुरुष के एक वचन है मोक्ष से, तो ये जो है ना मुचली मोचने धातु है, मोक्ष से मुक्ति को प्राप्त करेगा। यज ज्ञात्वा जिसको जान करके, उसको जानेगा कैसे, तो एक उदाहरण दिया ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान का अर्थ ये है सदगुरु के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय के द्वारा सत्संग के द्वारा जो वैदिक ज्ञान, ये ज्ञान है यहां पर ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए उसको कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान को आप कैसे प्राप्त करेंगे? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिक कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान, समय तो हो गया, इसके विषय में उदाहरण ऐसे भी है कि गुरु पूर्णिमा में एक व्यक्ति आया, उसने जाकर के जो है अपने गुरु जी को बहुत बड़ा फूलमाला पहनाया। गुरु जी फूलमाला देखते रहे, इतने में जो है उस सज्जन ने कहा कि महाराज मैं आपका शिष्य हूं, हम लोग बैठे हैं, आप फूलमाला को देखते हैं हमको देखते नहीं है, तो उतार दिया उसने। और उसको जब देखने लगे उसने कहा कि आप हमको देखते रहोगे कि फूलमाला को भी देखोगे? तो उसके गुरुजी ने कहा कि बोलो क्या करें। तो सज्जन ने कहा कि थोड़ा फूलमाला को भी देखो और थोड़ा हमको देखो, इधर भी देखो और उधर भी देखो, इसका नाम है ज्ञान। आप संसार को भी देखो और संसार के अधिष्ठान ईश्वर को भी देखो। संसार बनाया है तो अच्छी बनाया है, जगत सृष्टा जो परमेश्वर है संसार को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, उससे भी ज्ञान, लेकिन संसार सत्य नहीं है ये ज्ञान, ईश्वर सत्य है ये ज्ञान। इसको आप कैसे जानेंगे? शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा। इसलिए ज्ञानम और विज्ञान का अर्थ लिखते हैं विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम। भगवत पाद कहते हैं अनुभव से युक्त, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, इसको जानना, इसका नाम है विज्ञान माने अनुभव। यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएगा, ऐसे यहां का ये श्लोक की व्याख्या है। इसके ऊपर भाष्यकार ने भी थोड़ा लिखा है। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम। भोले वृंदावन बिहारी
हरिओम। पूज्य महाराज जी के 19 चरणों में वंदन। पूज्य महाराज जी ने जो प्रारंभ भी किया वह पावन प्रसंग का सुंदर प्रसंग है। प्रेमपुरी जी महाराज का स्मरण भी किया, अखंडानंद जी महाराज का भी स्मरण किया, लगा के ऋषियों का कुंभ मेला एक घंटे में हमने सुना और देवों के दर्शन भी हमने किए। बहुत ही विद्वत वाणी हमारे बीच में श्रवण करने को हमें मिली। पूज्य महाराज जी बड़े भाव से कई ग्रंथों का, कई संतों का उदाहरण दे देकर हमें एक घंटे में इतना अनुग्रहित किया है कि हमें यह लालसा और बड़ी है कि हम रोजाना किस तरह से समय से आकर पूज्य महाराज जी को हम सुने। पूज्य महाराज जी प्रसन्नता की बात यह है कि विद्यानंद गिरी जी महाराज जो यहां के पूर्वाध्यक्ष रहे उनके परम शिष्य है, कैलाश आश्रम से पधारे हुए हैं और जो यहां की एक श्रृंखला है जिसमें हमारे साथ अखंडानंद गिरी जी महाराज वगैरह अनेक संत है उनका भी उनको ज्ञान है, उनका भी स्मरण उन्होंने किया। ऐसे विद्वत संत को आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए हरिओम।